कहा कि बहुत शुभ दिन है हमारे बीच आज मंच पर, जहां हम उस जगत नियंता के महावाक्य सुनेंगे। आज तप के धनी राजयोगी भ्राता ब्रजमोहन जी को आप सुन रहे थे, और अभी हमारे बीच में आदरणीय भ्राता निर्वैर जी, जिन्हें साकार बाबा ने, ये वो हस्तियां हैं जिन्हें भगवान ने स्वयं चुना। भ्राता ब्रजमोहन जी भी जब पढ़ रहे थे तो बाबा ने उन्हें उसी समय परख लिया था, और परखने के साथ ही उनके माता पिता से उन्हें मांग लिया था। हमारे बीच भ्राता निर्वैर जी हैं जिन्होंने सागर की गहराइयों को नापा है। मैं आवाहन करूंगी मंच पर आए, और उन्होंने उस ज्ञान के सागर की गहराई को नापने और ऊंचाई को नापने का प्रयास किया। बॉम्बे की धरणी में जहां वो देख रहे थे नीले सागर को, वहां नीले अंबर को देखा, उस जगत नियंता को देखा, पहचाना, और उसके बाद सागर से जमी पे और आसमां तक की ऊंचाइयां नापी। आदरणीय भ्राता जी हमारे बीच आ गए हैं, और दो दो हस्तियां हैं इसलिए डबल ताली बजाइए। रुक क्यों गए? भ्राता करुणा जी भी मौजूद हैं। सबसे बड़ी तारीफ की बात यह है कि भ्राता जी जहां सागर से जुड़े थे, वहां भ्राता करुणा जी इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक ऐसे जगत से मीडिया के धनी हैं, और हमारे बीच आज दो दो हस्तियां हैं। मैं सुना रही थी भ्राता निर्वैर जी के बारे में कि जिन्हें बाबा ने चुना, जिन्होंने मम्मा की गोद ली, जिन्होंने दादी माँ का बहुत प्यार लिया पुत्रवत। 59 में जब भ्राता जी ने अरावली की इन पर्वत श्रृंखलाओं में प्रवेश किया, उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा कि दुनिया कैसी है। यहाँ ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रांगण में आपने एक के बाद एक अनेक आयाम कायम किए, और संपूर्ण रीति से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को शिखर तक पहुंचाने में दादी के अंग संग रह करके सहयोग दिया। वो देश हो विदेश हो, विदेश की सेवाएं शुरू हुई तो लोग कहते थे इन विदेशियों को संभालेगा कौन, एक ही नाम सामने आता था, भ्राता निर्वैर जी। क्योंकि आपका हृदय इतना संवेदनशील है, विदेशी भाई बहन जब आए तो उनकी भाषा से ज्यादा उनकी भावनाओं को समझना मुश्किल काम था, और भावनाओं को समझने का काम भाई साहब ने किया। भाई हो या बहन हो, उन्हें बहुत प्यार से भावनाओं की भाषा से बाबा का ज्ञान समझाया। हृदय के अंदर करुणा का सागर उछलता था, पीड़ा सही नहीं जाती थी। आज हम देख रहे हैं, वो भी मधुबन देखा होगा पुराने लोगों ने, मेरा ख्याल है कि पुराने यहाँ शायद ही बहुत कम हो, साकार बाबा के जमाने के कोई है यहाँ? 60 से 70 के दशक के बीच के कोई भाई बहन है जिन्होंने पुराना अपना माउंट आबू देखा हो? आप हैं, चलिए कोई बिरला है कि जब यहाँ दांत में दर्द हुआ करता था तो लोग पालनपुर भाग कर जाते थे उसका इलाज कराने, और आज दांत से लेकर हृदय तक अगर दर्द हो तो उसका इलाज आप ग्लोबल में बड़े आराम से करा लेते हैं। और ये ग्लोबल हॉस्पिटल, उनकी प्रेरणा, उसका सूत्र आदरणीय राजयोगी भ्राता निर्वैर जी के हृदय में है। आज हम ज्ञान सरोवर देखते हैं जहां विभिन्न वर्गों की ट्रेनिंग प्रशिक्षण कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, इसके निर्माण में भ्राता जी का रात और दिन का योगदान है। हम सबके हाथ में वर्ल्ड रिन्यूअल आया करती थी, और उस वर्ल्ड रिन्यूअल का सुखद संपादन भी आदरणीय भ्राता जी के हाथ में था। इतना ही नहीं, यहाँ के कारोबार के हर पहलू को बहुत गहराई से आपने देखा सुना परखा, और बाबा मम्मा की आशाओं को पूरा किया। हर दिल अजीज, हर दिल से चाहे जाने वाले, चाहे भारत हो चाहे विदेश हो, आप हमारे सेक्रेटरी जनरल और ब्रह्मा कुमारीज हैं। बच्चों का भोलापन इतना भाता था कि एक जमाना था लोग भाई साहब को अंकल जी कहकर पुकारते थे। जितने बच्चे थे, बच्चों के प्रोग्राम भाई साहब ऑर्गेनाइज कराते थे। एजुकेशन विंग का निर्माण हुआ, आप चेयरपर्सन उसके बने और विभिन्न रूपों में आप इस यज्ञ को संभालते चले आ रहे हैं, आज भी संभाल रहे हैं। भ्राता द्वितीय करुणा जी, जिनका मैंने परिचय दिया कि वो भी इंजीनियर हैं और प्रारंभ के दिनों में हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वर्तमान में भी पीआरओ हैं, पहले भी पीआरओ थे और अभी तो आपने प्रगति की सीढ़ियां चढ़ते हुए पंचमुखी व्यक्तित्व धारण करके रखा हुआ है। आज जितना सैटेलाइट इलेक्ट्रॉनिक जगत आप देख रहे हैं, भ्राता जी की अहिर्निस मेहनत का परिणाम है। इतना ही नहीं, आज जिन सोफों पर बैठे हैं मैं उनकी बात नहीं करती, लेकिन पांडव भवन में, ओम शांति भवन में जब पहले पहले सोफे निर्माण किए गए तो भ्राता जी ने ही उसके लिए बहुत प्रयत्न किया। थोड़ा बहुत नहीं, मीडिया की कॉन्फ्रेंस लोग डरते थे कैसे होगी, मीडिया वाले थोड़े टेढ़े होते हैं, लेकिन भ्राता जी ने मीडिया वालों को भी एक नई दिशा अपनी गुणवत्ता से, अपने बौद्धिकता से प्रदान की और आप मीडिया प्रभाग के चेयरपर्सन हैं। गॉडलीवुड स्टूडियो हम देखते हैं, वो भी आपके सहयोग और सौजन्य का मोहताज है। तो आज हमारे बीच दो दो हस्तियां हैं और ये दोनों बाबा मम्मा के सामने के हैं। आज अपने मुखारविंद से हम सबका श्रृंगार करेंगे। भ्राता जी का विषय है यज्ञ स्नेही, यज्ञ सहयोगी और यज्ञ रक्षक हम कैसे बने। तो भाई साहब कभी अकेले नहीं आते, आजकल एक अपने साथ स्नेही और सहयोगी को जरूर लाते हैं। अब कौन पहले अपना मुख खोलेगा ये मैं नहीं कह सकती, मैंने दोनों का परिचय दे दिया है। अब आदरणीय भ्राता जी, और दोनों के आगे माइक है, वाह। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ दोनों का, बहुत 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 हृदय से स्वागत। एक और बात बड़ी महत्वपूर्ण, कभी देख करके मन में आता है कि निर्भय जी को किसने ज्ञान सुनाया होगा। जैसे जगदीश भाई जी के बारे में तो मालूम है कि कुंज दादी और दादी दीदी निमित्त बने, लेकिन हमारे भ्राता निर्भय जी की भी रूहानी शिक्षिका बहन उर्मिला जी बैठी हुई हैं, जो गांधीधाम से हैं, और एक बार उनके लिए करतल ध्वनि से स्वागत हो जाए। बहन उर्मिला जी से मैं निवेदन करूंगी कि वो मंच पर आ जाए। दो नहीं, तीन हस्तियां बहन उर्मिला जी सामने बैठी हुई हैं, कृपया उन्हें मंच पर ले आएं। सहयोगी बहन जहां कहीं भी हो उन्हें मंच पर ले आएं। जिन्होंने ऐसे सुंदर व्यक्तित्व का निर्माण किया है, बाबा के यज्ञ को एक अनमोल रत्न दिया है, मेरी आवाज अगर सुन रही है तो ऊपर आ जाए।
ओम शांति। आज का टॉपिक निर्भय भाई जी सुना रहे थे, यज्ञ स्नेही सहयोगी और यज्ञ रक्षक, ये हम सभी का बाबा ने दिया हुआ टाइटल है। तो हम सभी निर्भय भाई जी से सुनेंगे क्योंकि जो यहां तक आए हैं, कई भाई बहने सोचते हैं कि कोरोना पीरियड में 3-4 साल के बाद फिर से आए हैं, आप सबको बहुत 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 मुबारक हो। यज्ञ स्नेही तो हम सब बच्चे हैं, परिवार है, और बाबा का जो पांडव भवन की याद करते हैं हम सभी, मेरे से 1 साल पहले निर्वर भाई जी आए ज्ञान में और सेवा में, मधुबन में भी साथ ही साथ आए, तो स्नेही से सहयोगी जो बने एक दो को, किस तरह से संगम के जो जीवन है सतयुगी समान हम बन सके, जो ब्रिजमोहन जी ने भी परिस्था स्वरूप का आप सबको सुनाया, सहयोग से ही तो सारे विश्व में 147 देशों में आज सेवा चल रही है, तो सबका सहयोग से चल रहा है। बाकी जो रक्षक है, ये हम सबकी रक्षा तो बाबा कर रहे हैं, बाबा के छत्र छाया में है, फिर भी टाइटल बच्चों को बाबा देता है, ये यज्ञ रक्षक बच्चे हैं। तो रक्षा हम दुनिया के लिए, तो हमारा देश के लिए, तो हम कहते हैं कि जो बॉर्डर पे है या तीनों सेनाएं हैं, तो उनको हम देश के रक्षक कहते हैं। तो बाबा ने यज्ञ रक्षक बच्चे ऐसा कहते हैं, तो जरूर कुछ विशेषता होंगी उनमें, जो हम सभी आज निर्वर भाई जी से सुनेंगे ही। परंतु मुझे ख्याल आया कि भाई रक्षक जब जिसको कहा जाता है, कुछ विशेष उनमें जरूर क्वालिटीज होंगे, इस समय के अनुसार, चाहे प्रकृति का, चाहे जैसे विश्व में जो कोरोना जैसा आ गया, या आगे जो हम देख रहे हैं, जो कल्पवृक्ष में बाबा ने उस समय पर बताया था कि रशिया अमेरिका इस तरह से जो विश्व युद्ध के जो निमित्त बन रहे हैं, तो उनसे भी हमारा देश भी अपना है, बाबा के बच्चे जहां भी है तो विश्व भी अपना है, तो कैसे हम अपनी रक्षा करें, यज्ञ की रक्षा करें। तो मुझे यही आता है, जैसे हमारे बाबा मम्मा दादियां लास्ट लास्ट में तपस्वी मूर्ति ही बने, द पावर ऑफ साइलेंस कहते हैं, शांति की शक्ति कहते हैं, तो उसी को ही सबने बढ़ाया था। और यज्ञ में भी हमने देखा चारों ओर बट्टी 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 का ही आवाज सुनते आए, और मधुबन में भी जो भी आए बट्टी के नाम से बहुत खुशी खुशी से आते हैं यहां। ऐसा लगता है कि अष्ट शक्तियों में सर्वश्रेष्ठ शक्ति जो है पावर ऑफ साइलेंस है, उस साइलेंस शक्ति को हम लोग बढ़ाने में लगे हैं। फरिश्ता भी साइलेंस पावर से ही बन रहे हैं, तो मैं निर्वर भाई से भी आज सुनेंगे आपके साथ कि ऐसी क्या शक्तियां हमारे में होना चाहिए जो समय अनुसार स्वयं की भी, परिवार के भी, देश का भी, विश्व का भी, सर्व आत्माओं को वो शक्ति का अनुभूति हो। वो कैसे कर रहे हैं, बाबा करा रहा है, तो हम निर्वर भाई जी से सुनेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। आप सभी बहनें और भाई महान भाग्यशाली हैं सीजन की पहले टर्न में आज चौथा दिन है। आज के शुभ दिन पर अधिकतर चारों तरफ से आए हुए सभी बहनों और भाइयों को अधिक से अधिक ईश्वरी ज्ञान के अनुभव का लाभ प्राप्त हो रहा है। चाहे आप सन्मुख यहां पधारे हैं चाहे दूर देश में बैठे हुए भी, मधुबन की जो बातें हैं वो आप तक पहुंच रही हैं और उसका आप आनंद ले रहे हैं, उसके लिए इसका श्रेय हमारे आदरणीय भ्राता करुणा जी को जाता है। यज्ञ की जो मीडिया की सर्विस है उसकी शुरुआत और उसको धीरे धीरे डेवलप करते आगे बढ़ाते बढ़ाते विश्व के कोने कोने तक बाबा का स्वरूप देखने को मिले, बाबा के महावाक्यों से सभी लाभान्वित हों, उसका प्रबंध करने के लिए आप निमित्त बने और बनते ही रहते हैं। दो दिन पहले ही आप चेन्नई गए हुए थे, वहां पर इन्होंने बहुत बड़ा आयोजन मीडिया का रखा हुआ था। उस कार्यक्रम में आदरणीय भ्राता ब्रिजमोहन जी, बहन आशा जी वो विशेष रूप से उसमें सम्मिलित हुए थे और ड्रामा में एक हर एक का अपना पार्ट है। करुणा भाई विदेश तक जो बाबा के संदेश को सिर्फ नहीं बल्कि बाबा को ही विदेश के भी कोने कोने में और भारत में भी खास भारत की वो भाषाएं जो साउथ इंडिया में बड़े भावुक भाई बहने हैं, जो बड़ी रुचि से बाबा की बातों को सुन करके उसका आनंद भी लेते हैं और उसको आगे भी बढ़ा रहे हैं। अभी भी जिस मीडिया कॉन्फ्रेंस के लिए
को अब याद करो। शिव शक्ति तेना की रण फेरी अब फिर बजती है।
एक मौका था करुणा भाई खास मद्रास गए हुए थे और उसका कारण एक ही था, वहां की गोल्डन जुबली मनाई जा रही थी और जो बहन इस समय वहां पर निमित है वीनू बहन देखने में बड़ी छोटी है, लेकिन उसने चेन्नई और कोचीन उसके साथ में और भी पांडिचेरिया जो भी स्थान है सबको संगठित करके और बहुत ही अच्छे ढंग से सेवा के जो कार्यक्रम बनाए, देखने में इतनी नहीं आएंगी, उसका कर्तव्य उनको भी प्रत्यक्ष करता और उसके साथ साथ यूं कहेंगे कि हमारे करुणा भाई शुरू में निमित्त बने थे, रोजी बहन को साथ लेकर के मद्रास और दूसरे स्थानों पर सेवा को आगे बढ़ाने के। आज का जो विशेष सोमान जो लिखा हुआ है, मैं डबल लाइट अव्यक्त फरिश्ता हूं, तो मैं सोच रहा था अव्यक्त और फरिश्ता क्या दो अलग अलग हैं? यह एक ही है करुणा जी? अव्यक्त अलग है, फरिश्ता अलग है।
तक व्यक्त में है, फरिश्ता तो नहीं कहेंगे, तो फरिश्ता को सदा ही आपने देखा होगा दो विंग्स रहता है, पंख रहता है, जैसे उड़ते हुए लाइट स्वरूप का। सबका ड्रेसेस बाबा ने बना के पहले ही रखा है। जैसे ही हम सभी फरिश्ता बनेंगे तो हमारे लिए वो विशेष ड्रेस रेडी है। तो हम तो कहेंगे भले अभी थोड़ा समय है, तो हम सबका मन में तो अभी पक्का हो गया है कि हम ही फरिश्ता थे और अभी फिर से बाबा हमको बना रहे हैं।
तो ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता से आगे की स्टेज क्या है, देवता। आज की मुरली साकार मुरली, उसके अंदर इतनी गहराई से बाबा ने इस बात को स्पष्ट किया बहुत सारी बातें एक एक मुरली में स्पष्ट होती है। जिस समय मुरली सुनते हैं पढ़ते हैं बड़ा उस समय मन खुश होता है, आपस में हंस रहे थे, बाबा ने भी पूछा सारे दिन में कितने घंटे इस स्मृति में रहते, 8 घंटे तो अपनी कारोबार में रहेंगे, उसके अलावा कितना आप समय याद की यात्रा उसका लाभ लेते हैं। तो देखने में क्या आता है, साक्षी होकर के देखें कि अपनी कारोबार में इतने बिजी हो जाते हैं, ये भूल जाता है कि साकार बाबा ने हम बच्चों के सामने अपना एग्जाम्पल एक सेट किया था कि कैसे भी करके 8 घंटे जब मैं याद की यात्रा प्रैक्टिकल में करूं तो मैं अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त कर सकूं। और उस लक्ष्य को सामने रख के बाबा अपना ध्यान रखते, साइलेंस की तरफ ध्यान जाता। जब भी हम लोगों से या बाहर से आने वाले भाई बहनों से कोई भी बाबा से मिलना चाहते थे तो मिलने समय पहले बाबा साइलेंस में स्वयं को भी स्थित करते और दृष्टि देते देते हम बच्चों को भी उस स्मृति में पक्का कर देते कि हम बाबा के पास आए हैं और उसका लक्ष्य ये है। अपने सत्य स्वरूप की यथार्थ स्मृति अधिक से अधिक समय रहनी चाहिए। इसलिए बाबा ने काउंटिंग करके भी बताया, शुरू करते हैं भोजन के समय भी याद करते करते, बाबा की याद में भोजन शुरू करते हैं, थोड़े टाइम में बच्चों के ख्यालात आ जाते हैं, सेंटर्स के ख्यालात आ जाते हैं, ध्यान और कहीं किसी ना किसी कारण से, वो जो एक टिक याद की यात्रा चाहिए उससे चेंज हो जाता है। और इस बात को थोड़ा सीरियसली, जब तक हम ध्यान नहीं देंगे तब तक उन्नति नहीं होगी, आगे नहीं बढ़ेंगे। क्या हर वर्ष, जितने भी वर्ष बाकी हों, हर वर्ष यही टॉपिक्स लेकर के हम क्लास करते रहेंगे? कभी कभी तो सुनने को भी मिलेगा, ये तो हर साल हम सुनते आए हैं, नई बात क्या है इसमें? प्रश्न तो ये उठता है कि आपने ये किया है, सबसे नई बात तो यही है कि हमने कितने परसेंटेज में अपनी स्थिति को बनाया। साइलेंस की शक्ति बहुत काम करती है। बड़ी दादियों को देखा, प्रकाशमणि दादी को देखा, जानकी दादी को देखा, गुलजार दादी को देखा, दीदी मनमोहिनी को भी देखा, और बड़ी बहनें हैं हमारी आज भी, उनको भी देखते हैं। एक तरफ उनको कारोबार बहुत है, सेंटर्स नए खोलते हैं, भाई बहने नए नए आते हैं, और आजकल कायदे कानून की बातें भी बहुत हैं, उसके कारण भी काफी व्यस्त रहते हैं। तो व्यस्तता में ज्यादा टाइम जाता है या याद की यात्रा में ज्यादा टाइम जाता है, या अपने उस लक्ष्य के समीपता के अनुभव में ज्यादा टाइम जा रहा है? तो मेरे मन में ये बात समय प्रति समय आती रहती है कि हमें देह से न्यारे अपने आप को देखने का अभ्यास करना पड़ेगा। जब अपने आप को देह से न्यारे देखेंगे तो सिर्फ देखेंगे नहीं, उसका रस स्वादन भी करेंगे, उसका आनंद भी लेंगे। और क्यों बाबा इतना जोर दे रहा है उस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि जो बात हम अपनी जागृति स्थिति में ज्ञान की दुनिया की ज्ञान की बातों के आधार से अनुभव करते हैं, फिर भी उत्कंठा बनी रहती है। हम अपने अलौकिक स्मृति में बुद्धि को ले, क्यों? अवश्य उसमें कोई विशेष अनुभव होता है, विशेष उसमें रस है, विशेष उसमें खुशी है, अति इंद्रिय सुख है, कई बातें हैं उसमें। पर अगर मैंने अभ्यास ही नहीं किया, चार कदम चला ही नहीं, तो अनुभव कैसे होगा? इसलिए हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी फिर से ये पहला आपका ग्रुप है। बड़े भाग्यशाली हैं कि आपके मिसाल को देख करके बाकी आने वाले ग्रुप्स के भाई बहने उमंग उत्साह में आए कि जैसे पहले ग्रुप के भाई बहनों ने तपस्या की और अति इंद्रिय सुख का अनुभव किया और अपने उस लक्ष्य के नजदीक पहुंचे, हम भी ऐसे करें, हम भी उन्हीं की तरह करें या उनसे भी आगे जा सके। एक प्रकार से बाबा का ये सूक्ष्म तरीका है हम बच्चों को पुरुषार्थ में गहराई में ले जाने का। अब आप सोचिए, कभी कभी विचार चलता है 750 करोड़ आत्माओं में से पास विद ऑनर कितने होते हैं? पास विद ऑनर कितने होते हैं? माला कितने की बनती है? जो पास विद ऑनर होते हैं वो तो बहुत छोटी माला है। पूछेंगे भी कौन आएंगे उसमें, आप सभी उसमें हाथ उठा देंगे। प्रैक्टिकल क्या है? लेकिन करुणा भाई कितने आएंगे? 8
है, 108 है, 16108 है। मुझे तो ऐसे अनुभव होता है, हमारे प्रकाशमणि दादी जी ने जब 1 लाख की सभा में संदेश देती थी तो 9 लाख भी उसमें हो गया है, ऐसा मुझे अनुभव होता है। और जो भी भाई बहने आज यहाँ बैठे हैं, ये भी बाबा के सतयुग के ही आदि में आएंगे, ऐसा मुझे लग रहे हैं।
मुझे हंसी आ रही है, बाबा के पास, साकार बाबा की बात, बाबा के पास दिल्ली में कुछ कुछ बच्चे मिलने के लिए आते थे सुबह क्लास के टाइम, मुरली सुनते थे और सर्विस में थे, नौकरी करते थे और नौकरी भी कोई पुलिस में थे, कोई मिलिट्री में थे, तो बाबा बहुत उमंग से उनकी क्लास करा रहे कि आप बच्चे देश की भी सेवा कर रहे हो जो बहुत आवश्यक है, और उसके साथ साथ स्वयं ज्ञान योग से अपने आप को इतना परिवर्तन कर रहे हो, तो सत्युग में जरूर आएंगे। तो सभी ने ताली बजाई, आप भी बजाएंगे। परंतु उसके आगे आ, परंतु कर लो, परंतु क्या,
एक शब्द बाबा कहते थे, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार।
तो प्रकाशमणि दादी जी इसलिए नंबर नहीं बताती थी, किसी का भी नंबर नहीं बताती थी, इतना ही कहेंगी सत्युग में बाबा के समीप आएंगे, बस। किस नंबर में आएंगे ये नहीं बताएंगे, क्योंकि जानती थी नंबर वार तो होंगे, कोई आगे होंगे, कोई पीछे होंगे। लेकिन ये खुद को पता लगता है, हम साक्षी होकर के अपने दिनचर्या को, सारे दिन की दिनचर्या को देखें कि हमने स्वाभाविक रूप से नेचुरल तरीके से बाबा के साथ मन लगा के कितना समय बिताया। तो आप देखेंगे बहुत सारा समय कारोबार में चला गया, कारोबार ज्यादा याद रहा, याद की यात्रा अथवा कर्माती स्थिति को प्राप्त करना, संकल्प तक आया, थोड़ा टाइम के लिए आया पर बहुत काल के लिए। और बाबा कहता है जब बहुत काल आप इस स्मृति में रहेंगे तो अंत मते सुगते हो, और प्रैक्टिकल साकार बाबा ने अपने पुरुषार्थ से हम बच्चों को सिद्ध करके बताया कि अभ्यास करते 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 अंत में बैठे बैठे दादी के हाथ में हाथ देके दृष्टि देते देते फरिश्ता स्वरूप में बदली हो, संपूर्ण फरिश्ता बन गए। तो एक मिसाल सामने साकार बाबा का ऐसा है कि जिसने लक्ष्य को प्राप्त किया, बाबा का लक्ष्य यही था कि मैं बैठे बैठे देह से न्यारा बनूं और वो प्रैक्टिकल करके दिखाए। तो हम भी अपने लक्ष्य को रोज स्मृति में लाएं और जितना हो सके स्मृति स्वरूप बनते बनते एक दिन क्या होगा, हम भी फरिश्ता बन के उड़ चलेंगे अपने वतन की ओर। ओम शांति। अब 5 मिनट के लिए देह से न्यारे होके स्वयं को फरिश्ता स्वरूप में देखते उसका आनंद लीजिए।